नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम परमेश्वर के वचन में से नई बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण होगा। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इन दिनों याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बने। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारे कानों में से होकर हमारे हृदय तक पहुंचने पाए, हमें समझाने पाए, हमें सुधारने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से और अपराधों से हमें बचाने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के साथ में हो, उनकी सहायता करें, हम सब से आप बोले और बातचीत करें, आज के अध्ययन को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम सब पद 22 में देख रहे थे, एक अध्याय उसके 22 पद में, कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आज के विज्ञापन उच्च दाव पर हैं, रेडियो, टीवी, पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। समाचारों द्वारा ही हमारे विचार परिवर्तन नहीं होते, विज्ञापनों द्वारा भी हमारे विचार परिवर्तित होते हैं। विज्ञापनों में आपको बताया जाएगा कि उनका माल या उनका सामान कितना अच्छा है। अपने बॉस को वश में करने के लिए आपको कौन सा स्प्रे काम में लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन तो एक ही बात हमें कहता है कि आप प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने पाप में ही मर जाएंगे, उच्च दाव की बात नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय उसके 2 पद में, देखो अभी वह समय है, और भजन संहिता 95:7 में लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसकी वाणी सुनो। मेरे विचार में आज के युग में मसीही कलीसिया की सबसे बड़ी चूक का यही कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्वासी बम के भय से नहीं, परमेश्वर के भय को मानकर आराधना में जाते थे। आराधना की उपस्थिति और कलीसिया की सदस्यता नई ऊंचाइयों पर थी। वह समय मेरे लिए निश्चय ही परमेश्वर को महिमा देने योग्य बात है। उसी समय अव्यवस्था और अनैतिकता बढ़ने लगी, शराब पीना, तलाक देना और युवा अपराधों की वृद्धि, और विश्वासियों में संसार से लगाव पूर्ण विघटन हो गया था। तब क्या हुआ? कलीसिया परमेश्वर का वचन दब्बू वाणी में सुन रही थी। संभावना है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भी डर रहे थे, जबकि परमेश्वर ने आदेशात्मक शैली में वचन दिया था। हम भूल गए थे कि बाइबल को पकड़ने की अपेक्षा उस पर चलना है। धर्मशास्त्र को कंठस्थ करना अच्छा है, परंतु उस पर व्यवहार करना उससे भी अति आवश्यक है। हमने वचन में पढ़ा है, लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, याकूब बनो। यहां पर हम देख रहे हैं याकूब बनो का जो यूनानी शब्द काम में लेता है, उसका अर्थ है जन्म लेना, अस्तित्व में आना। यहां परमेश्वर की नया जन्म प्राप्त संतान को आदेश दिया गया है। परमेश्वर उद्धार से रहित मनुष्य से बातें करने को कुछ नहीं कहता है, केवल विश्वास करने को कहता है। जब यीशु मसीह से पूछा गया परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, तब उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 से 29 पद में, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अविश्वासी के लिए कार्य करना, जहां तक परमेश्वर का वचन कहता है, केवल प्रभु यीशु में विश्वास करना। परमेश्वर उससे करने के लिए कुछ नहीं कहता है, वह उसे बताना चाहता है कि उसने कुछ किया है। जब मैं युवावस्था में था तो स्कूल में शनिवार के दिन हम सब फुटबॉल खेलते थे। मैं पहली बार खेलने के लिए गया था, जिसकी लालसा मैंने सदा की थी। दूसरे स्कूलों के साथ खेलते समय हमारा सदैव ही झगड़ा हो जाता था, स्कूल चाहे जो भी हो। एक दिन खेलते समय मैंने देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। मैं जानता था कि वह खेल देखने नहीं, परंतु मुझे कुछ काम देने के लिए आ रहे हैं। सच तो यह है कि घर छोड़ने से पहले मैंने अपना दैनिक कार्य पूरा नहीं किया था। मेरे पिता ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने केवल मुझसे कहा। क्यों? क्योंकि अन्य बालक उसकी संतान नहीं थे, मैं ही उनका पुत्र था। मेरे मित्रों, जब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं बन जाते, वह आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। अपनी संतान से वह कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, प्रचारकों के लिए भी कभी कभी वचन पर चलने वाले बनो कठिन हो जाता है। एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वह एक डॉक्टर है और अच्छा विश्वासी भी है। डॉक्टर एक और मित्र के साथ में था जो उसके साथ खेलना चाहता था, अतः डॉक्टर ने मेरा परिचय उससे करवाया। यह डॉक्टर जो मुझसे बातें कर रहा था कहने लगा, ओ हमारे पास दो डॉक्टर हैं। मैंने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं प्रचार करने वाला डॉक्टर हूं, प्रभु की सेवा करने वाला एक सदस्य हूं, और वह दूसरा जो डॉक्टर था वह अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर था। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अधिकाधिक कर्म करने वाले डॉक्टरों की आवश्यकता है, केवल प्रचार करने वालों की नहीं। किसी ने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार से है, कर्म से प्रचार आसान है, करने से कहना आसान है। अधिकांश उपदेश बहुत लोग सुनते हैं, परंतु ग्रहण करने वाले बहुत कम होते हैं। यह सच है, परमेश्वर की संतान वचन सुनकर उस पर चलती है। वचन प्रथाओं, परंपराओं और अभ्यासों पर चलना नहीं सिखाता। वह नीरस, एक रूपता, लकीर पीटना नहीं, परंतु वचन का उद्देश्य यही है कि सक्रियता, जगाना और फलदायक कार्य, उत्साही जीवन, रोमांचक अनुभव दिलाना है। मेरे प्रियो, यदि हमारे मन की इच्छा से प्रेरित हम आत्मा से पूर्ण जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो हम खेल कर भी बाइबल अध्ययन का आनंद ले सकते हैं। वह वास्तव में उत्साहजनक होगा। मेरे प्रियो, लिखा है वचन सुनना ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलना है। वचन सुनने से आंतरिक इच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। जब हमने अपनी रेडियो प्रसारण सेवा आरंभ की, तब हमने अपने कर्मियों की संख्या भी कार्यालय में बढ़ाना आरंभ की। मुझे ऐसे मनुष्य, ऐसे कर्मी अच्छे नहीं लगते जो कमचोर या काम करने से हिचकिचाते हैं। परमेश्वर ने हर एक को चुन करके भेजा है और हर एक का योगदान महान है। वे रचनात्मक और समर्पित कर्मी हैं। मेरे विचार में परमेश्वर की सेवा में हमें रचनात्मक, सामर्थी, फलदायक कर्मियों की आवश्यकता है जो परमेश्वर की सेवा के लिए जलन रखते हैं। इसलिए लिखा है केवल सुनने वाले ही नहीं। कक्षा का विद्यार्थी होना और लेखा परीक्षक होने में अंतर है। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाता था, तब बहुत से लोग मेरी परीक्षा किया करते थे। मुझे उन परीक्षकों के साथ विद्यार्थियों से अधिक परेशानी थी। वे मुझे लगातार कहते रहते थे कि मैं विद्यार्थियों के साथ कठोरता का व्यवहार करता हूँ। उन्हें समझने की आवश्यकता थी कि मुझे अनुभव की आवश्यकता है, परंतु मेरे विद्यार्थी समझते थे कि मैं आधे समय उनका ठट्ठा करता हूँ। उन्हें न तो परीक्षा लिखनी होती थी, न तैयारी करनी होती थी। उन्होंने कभी अध्ययन लेख नहीं लिखे, उन्होंने कभी उपाधि नहीं प्राप्त की, उन्होंने कुछ नहीं किया। वे केवल वहां आकर बैठते थे। विश्वास कर्म करवाता है। मेरे मित्रों, वह आपको परीक्षकों के सामने आपको नम्र बनाता है। एक मनुष्य अपने विश्वास की राग अलापता रहता था, परंतु किसी के लिए कुछ भी करता नहीं था। एक दिन उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी उसका एक मित्र वहां से निकला। उसने कहा, आप निश्चय ही विश्वास में स्थिर हैं। हमें आज बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विश्वास में स्थिर होने के बाद कुछ ना कुछ करते रहना है, कीचड़ में फंस कर नहीं रह जाना है। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देना एक भयानक बात है। पहला योहन्ना की पत्री 1:8 में प्रेरित कहता है, जो यह कहता है उसके जीवन में पाप नहीं है, वह अपने आप को धोखा देता है। अपने पाप को औचित्य प्रदान करना और अपनी आक्रमणता को उचित मानने के भ्रम में पड़ना बहुत आसान है मेरे मित्रों, इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अब हम आगे देखते हैं, 23-24 में वचन का खतरा दर्शाया गया है। आइए हम पढ़ें याकूब की पत्री 1:23 लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। लिखा है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। उस युग में पीतल की चादर पर पॉलिश करके उसमें मुंह देखते थे, यानी कि चेहरा देखते थे। यहां दर्पण परमेश्वर के वचन की उपमा के रूप में काम में लिया गया है। दर्पण में आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। यदि आपके चेहरे पर कोई दाग है तो दर्पण आपको वह दाग भी दिखाएगा। कुछ लोग दर्पण के आगे अधिक समय नहीं देते हैं। वचन भी आपको आपकी सच्चाई दिखा देगा कि आप कहां पर हैं। लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अब आप कहेंगे कि वह स्त्री होगी। आप यह भी कहेंगे कि स्त्री है जो अपने समय को दर्पण के सामने बिताती होगी, क्योंकि स्त्रियां दर्पण सदैव साथ में रखती हैं कि अपना रूप निखार और केश विन्यास देखती रहें। क्या पुरुष दर्पण में नहीं देखते? वे भी कम निसार नहीं हैं। पुरुष भी तो अपने बाल अपने कपड़े दर्पण में देखता है। आज ऊपरी दिखावे का युग है और खतरा यह है कि आप अपनी कमी देखकर कुछ करते नहीं हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन का सुनने वाला जो वचन का पालन ना करे वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देख करके भूल जाता है कि वह कैसा है। वह अपने चेहरे को दोष देता है और कई बार ऐसा भी होता है कि उसे वह सुधारता नहीं है, सुधार नहीं पाता है। इसी प्रकार वचन भी एक दर्पण है जो हमें हमारी कमियों को दिखाता है और वचन पर चलने से वे कमियां दूर हो जाती हैं, अन्यथा हम कीचड़ में ही फंसे रह जाते हैं। याकूब के पत्र 1:24 में लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। याकूब 19 में कही गई अपनी बात का ही प्रतिवाद प्रस्तुत करता है, सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। यहां उसका बल है, दर्पण में देखते समय शीघ्रता न करें। यहां समानांतर विचार है, सुनने में तत्पर अर्थात पूरा ध्यान लगाकर वचन सुने, परमेश्वर के वचन के प्रति सजग रहें। याकूब के कहने का अर्थ है इसके साथ लापरवाही ना दिखाएं, उसे शीघ्रता में ना पढ़ें। वह जो केवल वचन सुनता है उस पर चलता नहीं, उसका बाइबल ज्ञान उसे कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। और यही कारण है कि बहुत सारे परिवार बहुत सारे व्यक्ति आज परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आगे नहीं आते हैं। वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक रूप दर्पण में देखकर चला जाता है और शीघ्र ही भूल जाता है कि वह कैसा था। मेरे प्रियो, जो लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते वे पापी हैं और संबंधित संदर्भों को अनदेखा करते हैं। यही कारण है कि आज मूल पाठ विषयक प्रचार पुराना हो गया है। मेरे विचार में हमें संपूर्ण वचन को पढ़ना चाहिए, न कि मन भावन वचनों को यहां वहां से निकालकर उन पर ही ध्यान मग्न करें। परमेश्वर ने अपने वचन को पदों में विभाजित नहीं किया है। पद निर्धारण तो मनुष्य का काम है। हमें परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों पढ़ना है और मानना है। वचन एक प्रकार का दर्पण है जो हमारी त्रुटियों को प्रकट करता है। एक मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है और उसके एक्सरे से प्रकट होता है कि उसे कैंसर है, तो क्या वह डॉक्टर से कहेगा, मुझे आपके एक्सरे पर विश्वास नहीं है, मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे भूल जाना चाहता हूं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो अंत में मर गए। मेरे एक मित्र को जब डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है, तो वह शीघ्र अति शीघ्र उपचार करवाना चाहता था। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर प्रतिक्रिया ना दिखाएं, या आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रतिक्रिया ना दिखाएं तो आप उत्तरदायी होंगे। यदि डॉक्टर आपसे कहे कि आपको कैंसर है और आप उसका उपचार ना करवाएं, तो क्या डॉक्टर की गलती है? जी नहीं, यह उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है और प्रतिक्रिया दिखाना आपका उत्तरदायित्व है। नया जीवन प्राप्त मनुष्य से वचन कहता है, तुम विकास नहीं कर रहे हो, तुमने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसको याद दिलाता है और बुलाता है। एक बार एक संगीत अगुआ आराधना में कह रहा था, आइए हम खड़े हों और गाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर बने रहो। परंतु सच तो यह है कि हम प्रतिज्ञाओं पर बने रहने की अपेक्षा प्रतिज्ञाओं के प्रति उदासीन हैं। याकूब कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमारी कमियों को, त्रुटियों को हम पर प्रकट करता है, और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, वचन हमें ज्यों का त्यों प्रकट करता है और हमारे अस्तित्व के पार हो जाता है। बाइबल यद्यपि सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, वह सबसे कम पढ़ी जाने वाली पुस्तक भी है। बाइबल लोगों की मनपसंद पुस्तक नहीं है, क्योंकि वह हमें बताती है कि हम क्या करें। एक बार एक पहाड़ी ने कुछ पर्यटकों से संबंध बनाया जो वहां आकर ठहरे थे। जब वे चले गए, तब वह उनके ठहरने के स्थान पर गया और वहां उसे उनकी छोड़ी हुई वस्तुओं में एक दर्पण मिला। उसने दर्पण पहले कभी नहीं देखा था। दर्पण में देखकर उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने फोटो खिंचवाया था। वह उस दर्पण को लेकर घर गया और अपने बिस्तर में छिपा दिया। उसकी पत्नी ने उसे देख लिया था। जब वह बाहर गया, तब उसने चुपचाप से वह दर्पण निकाला और उसमें देखा, तो विस्मय से कहने लगी, ओह, अब समझ में आया कि वह इस बुढ़िया के साथ मौज कर रहा था। इसी प्रकार वचन पढ़कर किसी और के बारे में सोचना कितना आसान है, और वास्तव में यह उनका और उनके पति का ही चित्र था, और वह मेरा और आपका भी चित्र है, परंतु हम दूसरों के लिए सोचते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको देखना है कि आज हम वचन के दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं या नहीं। यदि हम नहीं देख रहे हैं, तो निश्चय है कि हम अपने कमियों को, घटियों को, त्रुटियों को दूर नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हम वचन के दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, तो हम अपनी कमियों को देख करके उसे दूर कर सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर की सहायता के द्वारा से। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं? आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो बाइबल घर में रखे हैं, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि उनके जीवन में अभी भी अंधेरा है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को महत्व दें, उसके निकटता में आए, उसे न केवल देखें परंतु उसे पढ़ें, न केवल पढ़ें परंतु उसके अनुसार चलने का यत्न करें, ताकि मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन आशीषमय जीवन हो जाए। दूसरों पर उंगली न उठाएं परंतु अपने आप को देखें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप अपने जीवन के लिए एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया, जब से मसीहा मेरे।